لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں سب کو جانتا ہے. اگر چھپا ہوا ہے دل کے اندر کہیں تکبر، جتنا مرضی کہتے رہے نہیں جی میرے اندر کہاں تکبر، میں تو بڑی عاجز مزاج، میں بڑے مسکین بندے ہیں. مسکینی تمہاری کیا ہے؟ تمہارے تو بات میں مسکینی نہیں، تمہارے کام میں مسکینی، کیا مسکینی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، اس کو خوب معلوم ہے. تم نہ ظاہر کرو تو کچھ بھی بولتے رہو، کہتے یہ ہیں اور عمل کچھ اور ہے. تو جو چھپاتے ہیں وہ اس کو پتا ہے، اور جو اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ بھی اس کو پتا ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک وہ نہیں محبت کرتا تکبر کرنے والوں سے. اچھا، اگر وہ نہیں محبت کرتا ان سے جو اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے صرف وہ لوگ ہی جنت میں جائیں گے، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا وہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ چاہے خود اپنے آپ کو کتنا ہی کچھ کہتے رہیں، لیکن اگر اندر تکبر ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں تکبر کرنے والوں سے، تو جو جس سے اللہ کو محبت نہیں وہ کہاں جائیں گے بتائیں؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ ہے نا تکبر، اور کچھ نہیں، کیا نازل کیا وہی پرانے لوگوں کی کہانیاں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیا ہے، یہ کیا باتیں، اصل میں اولین مخاطب تو قریش تھے، تو ان سے عرب والے آ کے پوچھتے تھے کہ کیا یہ کیا کہتا ہے، یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کیا کہتا ہے یہ؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی وحی اترتی ہے. تو کیا کہتے؟ نہیں نہیں بس ویسے ہی پرانی کہانیاں سناتا رہتا ہے اور کچھ نہیں ہے. بہت جگہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں قرآن کو، اساطیر الاولین، پرانی کہانیاں، کس سے کہانیاں لے کے بیٹھا ہے، کبھی یاد کبھی سمودی نے قوموں کی، موسیٰ علیہ السلام کے قصے، بس بار بار وہی قصے ہیں. اچھا آپ کو نا حیرت ہوگی، بعض مسلمان بھی ایسی باتیں کہتے ہیں، ہم نے تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیا، کیا ہے بس ایک قوم کا قصہ، اس کا قصہ بس یہی ہے اس کے اندر، تمہیں نے یہ نہیں پتا کہ کافر کیا کہتے تھے اس قرآن کو، اور بھی کہتے تھے، لیکن اسپیسیفکلی نظر بن حارث جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا، یہ بات کہتا تھا کہ یہ قصے کہانیاں، اور اس کے توڑ کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی مجلس سے سجانا شروع کر دی، اور سنگرز کو لے کر آتا تھا، ایسی لونڈیاں جو سنگ کرتی ہیں، اس زمانے میں لونڈیاں ہی گاتی تھی نا، تو ان کو لاتا تھا کہ یہ ذرا جس کو ہم کہتے ہیں نا کلچرل شو، تو وہ سجاتا تھا، کلچرل شو کرتا تھا، انٹرٹینمنٹ کا انتظام کرتا تھا وہ. تو جیسے آج کلچر اور ثقافت کے نام پر کتنے شوز ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں اس طرح تھا، اس زمانے میں کوئی سٹیج نہیں تھا، لیکن جیسے بھی وہ تھا، وہ اس زمانے کے کلچرل شوز تھے اور اس زمانے کی انٹرٹینمنٹ تھی، تو وہ کانسرٹ کرواتا تھا، یعنی وہ سنگ کرتی تھی، کانسرٹ تھا نا. تو مقصد کیا تھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے قرآن نہ سنیں اور میرے پاس آئیں، اور اس کے لیے وہ قصے کہانیاں بھی لے کر آیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈرامے فلمیں. اب وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس سکرین نہیں تھی تو وہ منہ سے بول کے بتاتے تھے، تو وہ اسپیشلی لے کر آیا اس طرح کے قصے کہانیاں، اتنے سنسنی خیز، اتنے زبردست رستم مستم یا کے قصے، اور وہ سناتا تھا. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ وہ لوگ ظاہر ہے کہانیوں میں بڑی دلچسپی ہوتی لوگوں کو، تو یہاں بیٹھ جائیں اور وہاں نہ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں. لوگ وہاں جاتے تھے نا، تو اس نے کیا کیا کہ اس طرح سے میں ان کو ادھر سے کھینچ کے ادھر لے آؤں. آج آپ دیکھیں، اس کے ساتھ تو نہیں لیکن ویسے آپ میں بات کر رہی ہوں، دیکھیں ایک جگہ کانسرٹ ہو کیسے بھرا ہوتا ہے، جیم پیک، اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ پتہ نہیں کتنی دیر جو وہ گاتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ کھڑے میں، کرسیاں بھی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ چپکے میں ہیں، اتنا ہجوم کے حد سے زیادہ. اور دوسری طرف مسجد دیکھ لیں، تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، अव्वल तो मस्जिदों के हालात ही क्या हैं, रमजान के अलावा वहां पे बिल्कुल ही सुनसान होती हैं, एक आध सफ के अलावा तो होती नहीं। सब मस्जिदों का हाल देख ले, और कॉन्सर्ट्स का हाल देख ले, सिनेमाओं का हाल देख ले, हालांकि पैसे देके जाना पड़ता है वहां, तो वो एक एंटरटेनमेंट है ना, और इधर अल्लाह की बात हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की बात बताते थे, तो हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो लोगों को इस तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगा देते। आज भी आप देखें लोग जो ड्रामों के एडिक्ट हो जाते हैं, पहले जमाने में तो एक एक किस्त आप देखते थे एक एक हफ्ते में, तो उसके बाद चलो, तो सुना है कि बाज ड्रामे ऐसे होते थे कि गलियां सुनसान हो जाती थी, सब लोग घरों में घुस जाते थे वो ड्रामा देखने के लिए। अब ये है कि हमें हर ड्रामा ये इंटरनेट पे मिल जाता है, तो लोग सुना है कि पूरी पूरी रात पूरे दिन देखते रहते, उनको इतनी सस्पेंस होता है ड्रामे में कि वो कहते आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ। तो क्या है तो वो झूठी कहानियां ही ना, लेकिन कितना वो अपने आप के अंदर इन्वॉल्व कर लेती, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो देखो जरा कैसे लोग थे, आप सरसर उनको छोड़ के वहां पे जाके किससे कहानियां सुनते थे, और खुद हम क्या कर रहे हैं। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारा हाल क्या होता है। जबकि एक तरफ कुरान है, फिर कहते हैं कुरान के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, क्या करें टाइम ही नहीं है। जब टाइम आपका इन चीजों में गुजरेगा तो टाइम निकलेगा कैसे, जब टाइम फेसबुक पे गुजरेगा, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें हैं, सबको पता है उनके नाम क्या लेने, उन सारे वो टिकटॉक बना रहे हैं और लगा रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं, इन्हीं चीजों में टाइम गुजरेगा। यही सारी चीजें थी ना जो वो उस वक्त करता था। अब उस जमाने के अंदर इंटरनेट जैसी चीज नहीं थी, और जितनी फैसिलिटीज थी उसके मुताबिक उस जमाने की ये एंटरटेनमेंट थी, आज की इस तरह की हो गई, आगे आगे वक्त में पता नहीं कैसी कैसी आती जाएंगी। लेकिन जब वो चीजें टाइम ले लें, तो मुझे बताओ कुरान का कहां से टाइम निकलेगा। निकाल के देखिए जरा इन चीजों को, सब इन चीजों को निकाल दें जिंदगी से, क्यों ना टाइम निकलेगा कुरान के लिए, जरूर निकलेगा फिर। लेकिन हमारे कई मिनट तो छोड़े घंटे इन चीजों में गुजर जाते हैं, एक एक स्टेटस और पता नहीं क्या देखने में, और खुद शेयर कर रहे हैं, कभी इधर से आ रहा है कभी इधर से जा रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर ही कितना टाइम गुजर जाता है। और दीन भी हम पढ़ रहे हैं तो व्हाट्सएप से, वो वहीं से हम अपना दीन लेते हैं, किसी ने कुछ शेयर कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई एक वीडियो आ गई वो देख ली, हम सोचते हैं बड़ा हमारा दीन मुकम्मल, कुरान की तरफ नहीं आना बस। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान के अजाइबात तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, ये का मुजजा है इसके, फरमाया ऐसा नहीं। अच्छा बास लोग एक दफा कोर्स करके ना सोचते हैं हम तो मुकम्मल हो गए, बस कोर्स जो हमने कर लिया, हमने तो पढ़ा हुआ है कुरान, उनके लिए मुकम्मल हो गया। जबकि आपसे सर हमने क्या फरमाया, इसके मौत से इसके अजायबात तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। दुनिया की किताबें आप पढ़ ले एक दफा दो दफा, चलो 10 दफा पढ़ लेंगे उसके बाद नहीं आप पढ़ सकते, लेकिन ये ऐसा कलाम है कि जो आप पढ़ते जाएं हर दफा नया असर करेगा। यकीन करें मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है, जब आपने पहले पढ़ाया होगा तो किसी पता नहीं, अल्लाह जाने उस वक्त क्या दिल की कैफियत क्या होती है, हालात क्या होती है, उसके मुताबिक वो आयात कैसे असर करती हैं, आप किस सिचुएशन के होते हो में होते हो उसके मुताबिक वो आयात जवाब देती हैं आपको। अजायबात इसके कभी खत्म ही नहीं होते, और फरमाया जितना भी इसको पढ़ लें ये कभी पुराना नहीं होता। तो फिर मुझे बताएं वो लोग जो कहते हैं हमने कोर्स कर लिया, हमने दो दफा कर लिया, हमने एक दफा कर लिया, तो वो तो समझते हैं ये पुराना हो गया ना, चलो आप कोई और चीज सीखते, ये तो पढ़ लिया हुआ है। आप सल्लम की बात से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती, हमारी बात झूठी है अगर हम कहते हैं हमने पढ़ लिया ना बस ठीक है, अब और कितना पढ़े कुरान को, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाए ना, नहीं ये कभी पुराना नहीं होता, ये आपके नबी ने फरमाया। आप कैसे कहते हैं कि हमने कर लिया कोर्स तो बस ठीक हो गया, तो ये कुरान का मोजज़ा है, और इस मोजज़े से महरूम है वो लोग जो कुरान को नहीं पढ़ते, जो इसकी तरफ नहीं आते। तो ये कहते हैं असातीरुल अवलीन, पुराने लोगों की कहानियां जी, उनके किस्से हैं। और ऐसे लोग अक्सर वो लोग होते हैं जो लोगों को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लोगों के अंदर बड़े इंटेलेक्चुअल बने होते हैं, मैं बड़े पीएचडी बड़े, तो ऐसी बातें लोगों के अंदर फैलाते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया, मैं बड़ी हैरान हुई। अब ये देखें मैं आपको मुसलमानों की बात बता रही हूँ, काफिर की नहीं बता रही, और अपने मुल्क में किसी की बात बता रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि देखिए मुझे कोई एक मिली, वो पीएचडी है, तो वो उन्होंने कहा है कि जी जब हदीस लिखी गई थी ना, तो वो तो सारे आदमियों ने लिखी थी, औरतों ने तो नहीं लिखी ना हदीस, तो वो आदमियों ने लिखी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी अपनी अपनी बातें उसमें डाल दी, तो उनमें औरतों की फेवर में बात नहीं है, सारी आदमियों के फेवर में है। मैंने जिस बंदी ने मुझे कहा, मैंने कहा उससे जाके पूछना जो जिसने PhD की हुई, कि तूने कितनी हदीस की किताबें पढ़ी है, कितनी पढ़ी है हदीस की किताबें, ये बोहतान सहाबा पे, इंसान का ईमान कैसे रह सकता है जो बोहतान बांधे सहाबा के ऊपर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस पे कि मेरे सहाबी के ऊपर कभी कोई बात ना करना, तुम लोग पहाड़ों के बराबर भी सदका कर दो तो मेरे सहाबी की एक मुट्ठी बराबर सदके के इक्वल नहीं हो सकती वो, तुम उनके ऊपर तान कर रहे हो, तुम्हारा ईमान किधर गया फिर? और ये हम अपने आप को कहते हैं मुसलमान, ये झूठ नहीं है तो और क्या क्या मतलब है कि सहाबा ने खुद अपने फेवर के अंदर, मर्दों की फेवर के अंदर उसके अंदर हदीसें बता दी, और चूंकि औरतों बेचारियों ने तो लिखी नहीं हदीस, तो उनकी तो फेवर में कोई है ही नहीं। मैंने कहा उससे जरा पूछ के मुझे बताना उसने पढ़ा कितना है, फिर बात करें। ये है हमारे आज के हालात, और इतनी तकलीफ होती है ना ये सुन के, और फिर उसके बाद जब हम लोगों को कहते हैं खुदा के लिए आके इल्म लो, तो कहते नहीं नहीं हमें सब कुछ पता है, अरे पता का ये हाल है। अब जब ये बातें करते हैं ना जो कि ये पुरानी बातें हैं जी, पुराने किस्से हैं, लियहमिलु औजारहुम कामिला यौमल कियामत, ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे कियामत के दिन, और सिर्फ अपने बोझ नहीं, वो मिन औजार अल्लदीना युदल्लूनहुम बगैर इल्म, और उनके भी बोझ उठाए जिनको ये गुमराह करते थे बगैर इल्म के, खुद कुछ नहीं पता। कुरान में ये कहां लिखा है? कुरान में तो है ही नहीं, तो तुम्हें कुछ पता भी है? तुमने कितना कुरान पढ़ा? यकीन करें कितनी दफा पढ़ा के भी भूल जाता है कि क्या ये बात थी इसके अंदर, या क्या था, किस तरह से कही गई, हमें कौन सा अजबर याद है हर चीज, लेकिन कुछ इल्म नहीं होगा, और बैठे बैठे, यानी मुझे अफसोस इस बात का होता है। हाँ देखें, मेडिकल के लिए भी कितने साल पढ़ना पड़ता है, PhD के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे हालात ये है कि दीन के मामले में हर कोई आलिम है, हर कोई अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि हर कोई इंटरप्रेट कर रहा है कुरान की आयतों, हर कोई खोल के बैठ के तो उसको तशरीहें करना शुरू हो गया, तफसीरें करना शुरू हो गया, और ये सोच लिया कि हम तो बड़े आलिम हैं, और पीछे देखे उनके बैकग्राउंड के क्या इनका इल्म है, कुछ भी नहीं। जरा पूछें जहां से भी आप जाके तालीम ले रहे हैं, जिन लोगों से भी वो कह रहे हैं जी मैंने तो फलां जगह से पढ़ा, मैंने तो फलां को सुनती हूँ, उस जिससे जिसको सुनती हो उसको पीछे वो क्या उसकी बैकग्राउंड, उसने किन मशायख से सीखा है, ये तो सोच लो। ऐसे लोग खुद तो भटकते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं, इसीलिए कुरान कहता है वो कयामत के दिन, ली का मतलब है, ली दो तरह के हैं, एक ली लामे कई होता है जिसका मतलब होता है ताके, जिस तरह जैसे मैं अभी कह रही हूं ताके वो उठा ले, कि वजह यानी आगे बयान हो रही है, किस लिए वो ऐसे कहते हैं ताके उस दिन उठाए ना, और दूसरा लामे आकिबत होता है, उसको कहते हैं लामे आकिबत, ये दोनों ही हो सकता है, ये ली जो है ली यहमिलू का ली, लामे आकबत का मतलब क्या, उसका अंजाम क्या होगा वो आगे बयान हो रहा है, यानी ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि ये पुरानी कहानियां, उनका अंजाम कयामत के दिन ये होगा कि वो अपने बोझ भी उठाएंगे, और उनके बोझों मिन औजारहिम का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे एक बात याद रखिए, मिन एक होता है तबईजिया, तबईजिया का मतलब होता है बाज, बाज बोझ उनके भी उठाएंगे, यहाँ पे बाज का माना नहीं है, ये मेन जो है ना ये मेन जिन्स का है, यानी इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि इसको तबईज का मिन नहीं लेंगे बल्कि इसको जिन्स का मिन कहेंगे, यानी कि बाज उनके बोझ नहीं उठाएंगे, को कुछ उनके बोझ उठा लिए, अपने तो पूरे उठाए, उनके कुछ उठा लिए, ये मतलब नहीं है यहाँ पे, ये इसका मतलब है उनके भी पूरे के पूरे बोझ उठाएंगे और अपने भी पूरे के पूरे बोझ उठाएंगे, और ये ना समझो कि उनके बोझ कम हो जाएंगे जिनसे उठा लिए इन्होंने, कि उनका तो खुद ले लिया, जैसे आपने कोई ग्रोसरी किसी के हाथ से खुद पकड़ ली तो उसका हाथ तो हल्का हो गया ना, ऐसा नहीं है, उनके बोझ उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि जो लीडर हैं या जो ये जो हमारी, तो खैर लीडर उनको क्या कहेंगे, हमारे तो दावतों में हमारी मजलिसों में आप देखें कुछ लोग बड़े बोल रहे होते हैं, बहुत बोल रहे होते हैं, और उनके पास पीछे इल्म कुछ भी नहीं होता। अगर आप उनसे पूछें ना, आपने कितनी जगह से दीन की तालीम ली, किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े, किन मशायख से आपने इल्म लिया, कौन आपके असातिज़ा कराम है, तो उनका सारा इल्म क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट पे मैंने ये पढ़ा, मैं तो बड़ी रिसर्च करती हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो यहां से पढ़ती हूँ, मैंने तो बड़ी किताबें पढ़ी, मैं तो फलां करा। आपके मशायख कौन है, जिस शेख के पास आप बैठिए, आप देखेंगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। तो ये लोग अपने बोझ भी उठाएंगे और दूसरों के पे फुल बोझ उठाएंगे, जिनको इन्होंने भटकाया बगैर इल्म के। और भटकने वाले को भी शाबाश है कि जो बगैर इल्म के है, ये भी उसकी बातों में आ गया, फिर उसकी भी अकल के ऊपर आफरीन है कि जिसने ये ना पूछा कि तेरे पास इल्म क्या है जो तू ये बात कर रहा है। अब वो दलीलें भी बहुत देंगे, वो बातें भी बड़ी फोर्सफुल करेंगे, लेकिन बगैर इल्म के, ठोस इल्म नहीं है। तो ये जो अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, आप पूछ के देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। और फिर उनकी बातें फैलाने वाले भी आगे से आगे फैलाते हैं, बहुत केयरफुल रहना चाहिए ऐसी बातों को आगे फैलाने से, क्योंकि अगर आप उनके एजेंट बन गए तो जिस तक भी फैली वो बात, जिस तक भी आगे गई, बहुत आसान है व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड करना बातों को, कभी सोच भी लिया करें ये बात किसने कही है, आपको उसका पता है जिसने ये वीडियो बनाई या जिसने ये बात लिखी है, उसका पता है वो कितना ऑथेंटिक है। हो सकता है कोई झूठा हो सकता है कोई काफिर हो, उसने बस ऐसे ही मुसलमानों के अंदर साजिशों के लिए ऐसी बातें घड़ के और रख दी। तो अगर नहीं इल्म ना, तो मत फैलाया करें आगे, जब तक ठोस पता ना हो कि ये बात ऑथेंटिक है। एजेंट मत बने उनके जो बगैर इल्म के लोगों को भटका रहे हैं, बगैर तहकीक के आगे आगे करते रहना। तो अब वो देखें कयामत के दिन ये नहीं कह सकेंगे, आए हमें तो पता ही नहीं था, हमें कहाँ पता था, और हमें पता होता तो हम भी ना आगे करते बात। इसका मतलब ये एक्सक्यूज कयामत के दिन काम नहीं आएगा, ये कोई नहीं कह सकते कह सकेगा। आज तो किसी के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं कुरान पढ़ती कि मैं कयामत के दिन कह दूंगी अल्लाह मुझे पता ही नहीं था। यानी वो सोचती है कि अल्लाह ताला सुन नहीं रहा उसकी ये बात, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो किस खुदा के सामने जाके ये बात कहेगी जिसको शायद पास्ट का पता नहीं कि दुनिया में ये क्या कहती होती थी। हाँ, ऐसा खुदा समझते हैं आप, अपने खुदा को ऐसा समझते हैं, वो इस वक्त भी तुम्हारी ये बात को सुन रहा है कि मैं तो जाके वहां पे कह दूंगी। यानी आपका बच्चा, आप उसके सामने ही खड़ी हुई है और वो किसी को कह रहा है मैं तो अम्मी को कह दूंगा कि मैंने इसलिए ये झूठ बोला था, मैं तो अम्मी को कह दूंगा कि मैंने इसकी, और आप सुन ही रही हैं सामने। तो आप सोचे जरा कि हम कितनी गलत बात मुंह से कहते हैं जब ऐसे बहाने करते हैं, और क्या समझते हैं अपने रब को, वो तो हमारी रग रग से वाकिफ है। तो ये इल्म का ना होना किसी को बचा नहीं देगा वहां पे, कि ये कहे हमने इसलिए नहीं पढ़ते ना, हमें अमल करना पड़ेगा, अमल तो हमने करना नहीं है, तो हम कह देंगे हमें कहाँ पता था, हमें तो पता ही नहीं था। तो पता करना ये आपकी जिम्मेदारी है, अवेयरनेस होना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर मैं और आप ये कहकर छूट नहीं सकते कि क्या करते हमें नहीं पता था। और ये जो आज बड़े सियाने अकलमंद बनते हैं ना, बड़े साइंस को लेके और दलीलें देते हैं और फिर इंटरनेट से पता नहीं कहाँ कहाँ से दलीलें देते हैं, वो सब ये सोच के उनको डर जाना चाहिए कि कयामत के दिन अपनी तो मुसीबत पड़ेगी पड़ेगी, दूसरों की भी मुसीबत अपने सर उठानी पड़ेगी। तो जो भी ऐसे कहते हैं कि मैंने नहीं कुरान को समझना या मैंने नहीं रसूल की बात को समझना, और उनके करीब भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको ये लगता है कि पुरानी बातें हैं, वो भी ये समझ लें कि कुरान क्या कह रहा है। तो क्योंकि हदीस में आता है कि जो किसी काम की तरफ रहनुमाई करता है ना, तो जितने लोग उसके कहने पे करेंगे उन सब का बदला इस रहनुमाई करने वाले को मिलता है, चाहे आप बुरी की तरफ कर लें चाहे अच्छी की तरफ कर लें। जैसे हदीस में आता है जिसने हिदायत की तरफ दावत दी तो उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना हिदायत पाने वाले को। इसीलिए आपको कहते हैं ना, आप आगे और लोगों को बताएं, आप कोई भी आपकी वजह से हिदायत पा गया, ये हदीस है, जिसने आपने हिदायत की दावत दी ना, और अगर वो आ गया ना, तो बस वो जो भी करता रहेगा, आपका अकाउंट भरता जा रहा है और उसके अजर में कमी नहीं होनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह ये भी है कि जो बगैर इल्म के लोगों को भटकाता गया, ना उसके पास इल्म था, ना आगे पहुंचने वाले के पास था, और वो भी आगे आगे बात करता गया, तो फिर सबके ऊपर बोझ आएगा। किसी को भी गुमराही की तरफ बुलाने से पहले, किसी को भी ऐसी बातें कहने से पहले इंसान को बहुत सोच लेना चाहिए। एक वाक्या किसी ने शेयर किया था कि अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे, किसी ने किसी पोर्न वेबसाइट को सब्सक्रिप्शन ली भी थी, और उससे जो गंदा मटेरियल आता था ना, वो लोगों को उसने मतलब नहीं ईमेल में भेजता था, या जो भी उनको आगे शेयर होती थी, तो उसने वो जो भी उसकी थी सब्सक्रिप्शन चल रही थी, एक दिन अचानक उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब जो जिन लोगों तक पहुंच रही थी ना वो गंदी मटेरियल, वो पहुंचता जा रहा था। अब उनको जरा फिक्र हो गई कि भाई देखो, ये तो दुनिया से चला भी गया और हमें आती जा रही, क्योंकि उसने वो ऑटोमेटेड जो भी उसमें डाला हुआ था, मुझे अब पूरा नहीं पता, नहीं ये सच्चा वाकया है जिन्हें सुनाया था। अब वो उनको मिल रही हैं, उन्होंने ना उसको वेबसाइट को किया उनको कि भाई आप लोग ये बंद कर दें, उन्होंने कहा इसका पासवर्ड लगाएं, इसका ये लगाएं, तो फिर आप बंद कर सकते हैं। अब वो पासवर्ड भी किसी को नहीं पता था, अब वो दुनिया से चला गया। आप देखिए पीछे उसके वो गंद लोगों तक जाता जा रहा है, और उसको इसकी गुनाह मिलता जा रहा होगा, वो जहां पे भी होगा उसको तो इसकी सजा मिल रही होगी ना। तो इंसान कभी दुनिया से चला जाता है और उसकी बुराई फैलती ही जा रही है। तो कितना केयरफुल रहना चाहिए। अला सा मा यजीरून, कितना सुन लो। अला का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, कान खोल के सुन लो, जरा तवज्जो करो, देखो कितना बुरा है जो बोझ उठा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। तो बोझ तो कभी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता, आपको पता है, बोझ तो हमेशा, अब ग्रोसरी भी उठा लें, कभी कभी अपना बच्चा, उसका भी बोझ लगने लगता है, इंसान कहता है मेरे बाजू थक गए, कोई और उठा ले। तो गुनाहों का बोझ, अपने ही गुनाहों का काफी नहीं कि दूसरों को भी उठा के दूसरों का भी अपने ऊपर ले आए। कद मकर अल्लदीना मिन कबलिहिम, तहकीक चालें चली इनसे पहले भी लोगों ने, फात अल्लाह बुनियाना मिन अल कवायदी, तो अल्लाह ताला ने उनकी इमारत को बुनियादों से, अल्लाह ताला आया, फखर अलैहिम सक्फ मिन फौकहिम, तो गिर पड़ी उन पर छत इनके ऊपर से, वाताहुम अल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, और उनके ऊपर अजाब वहां से आया जहां से वो सोच भी नहीं सकते थे, उनको शऊर भी नहीं था। यानी एक तो बुनियान जो है ना, इमारत जो है वो होती है प्रोपोगेंडा की, वर्चुअल इमारत ना, प्रोपोगेंडा, ऐसी बातें, ऐसी चीजें फैलाना, ये भी तो इमारत है ना, एक एक फिजिकल इमारत भी होती है। तो दोनों इमारतें यहाँ पे मुराद हो सकती हैं, कि आप इनसे पहले भी लोगों को देख ले, तो हिस्ट्री उठा के देख ले, लोगों ने बड़े बड़े मकर किए। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल, इसराइली रिवायात में आता है कि नमरूद जो था, उसने तो एक फिजिकल इमारत बनवाई, उसने कहा मैं इसके ऊपर चढ़ के इसके खुदा को देख के आता हूँ, जरा 5,000 गज ऊंची इमारत, यानी 15,000 फुट तक हो गई उसने बनवाई, और उसने कहा मैं देखूं जाके, तो फिर वो इमारत ऐसी गिरी। ये भी एक इमारत है, फिजिकल इमारत। लेकिन इसके अलावा आप देखें, हर दौर में लोगों ने पैगंबरों के ऊपर, अल्लाह और उसके कलाम के ऊपर बातें की और प्रोपोगंडा की इमारतें बनाई। जैसे आज के दौर में भी कभी रसूल के कार्टून बना दिए जाते हैं, कभी कोई बातें, कभी कोई किताबें शाये कर देता है, कभी कोई मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा है, उन्होंने शादी क्यों कर ली उनके साथ इतनी छोटी उम्र में, उन्होंने इतनी शादियां क्यों की, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने, ये सब प्रोपोगंडाज है। और आप देखेंगे ये इतना जो मर्जी कर ले, लेकिन इनके फिर प्रोपोगंडाज, इनकी ये जो थेरीज, इनकी जो ये बातें, या दीन के मुकाबले में, इस्लाम के मुकाबले अपनी थेरीज निकाल लेना, ये जितने भी नजरियात है ना, ये अपनी मौत खुद मर जाते हैं, यानी इनकी इमारत खुद ब खुद गिर जाती है। चाहे मॉडर्निज्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी नाम पे हो, आप देख लेंगे उस अगला दौर आएगा कुछ और बात हो जाएगी, अगला दौर आएगा कुछ और बात हो जाएगी, सारी थियोरीज खुद मर जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सूरज के ऊपर थूके तो अपने ऊपर ही थूक पड़ता है उसके, मेरे नबी की शान में एक जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। जितनी मर्जी बातें कर लें, अपने खुद ही अपने ऊपर बवाल ला रहे। तो इनकी जो बुनियान है ना, वो अल्लाह ताला आता है और कैसे छतों के ऊपर, छतों इनकी छतें इनके ऊपर गिर जाती हैं। और ये वाली आयत ना बहुत, जिस वक्त 9/11 हुआ था तो बहुत करी गई थी, इसकी तशहीर की गई थी कि देखो इमारत अपनी छत के ऊपर गिर गई और ऐसे जो पूरी छत नीचे आ गई। अल्लाह आलम किसी आयत को इस तरह से तो नहीं कहीं फिट कर सकते खुद अपनी मर्जी से, मगर जो लोग भी ऐसे प्रोपोगंडास करते हैं या तौहीद के खिलाफ, जिन लोगों ने भी, या दीन इस्लाम के खिलाफ जिन लोगों ने भी अपनी इमारतें बनाई, उनकी इमारतें उनके ऊपर ही आके गिर गईं, और ये ऐसी जगह से अजाब आया कि उनको शऊर भी नहीं था, उनको पता ही नहीं चला। और यहाँ पे बाज फिर रात में सुकुफ भी है, सकफ की सकफू यहाँ पे है ना, तो वहां पे सुकुफ भी है बाज, और वो सकफ की जमा है। तो सुकुफ क्या है, छतें, बेशुमार छतें। तो छतें मींस मल्टीपल जो मंजिलें होती हैं, एक से ज्यादा मंजिलें, वो सारी छत नीचे, छतें नीचे आ गई और सारी इमारत गिर गई। सुम्मा यौमल कियामत युख्जीहिम, फिर कयामत के दिन, ये तो दुनिया में हुआ ना, दुनिया में भी उनके प्रोपेगेंडा, इमारत गिर गई, दुनिया में भी कुछ नहीं रहा, फिरौन ने भी कहा, नमरूद ने भी ऐसी चालें चली। देखो कितने पिछले कितने लोगों की आप उठा के देख लें, खुदाई के दावे कर दिए, कहाँ गए वो, अब आज तक भी लोग बातें कर रहे हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं वो लोग, उनका तो किसी को पता भी नहीं, उनका नामो निशान भी मिट जाता है, कौन कहने वाले, कौन करने वाले, कहाँ है वो लोग, कोई पता ही नहीं। ऐसी ऐसी किताबें भी लिखी नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडास की किताबें लिखी गई, पता नहीं कितना है छुपते फिर रहे हैं आज। ये तुम इतने हो तो तुम आगे आओ ना, उनको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। तो ये तो दुनिया की इनकी रुसवाई है, आखरत में जो इनका अंजाम होगा ना, आखरत का जो है, सुम्मा यौमल कयामत युख्जीहिम, कयामत के दिन जो वो अल्लाह ताला उनको रुसवा करेगा, और कैसे रुसवा करेगा, जो ये चालें चली, जो इन्होंने प्रोपोगंडास किए, जो इन्होंने बातें की, जो कहा सातीरुल अव्वलीन है, ये अल्लाह के कलाम को ये कह दिया, जो कहानियां है कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही कहानियां लिखी हुई है। तो ये लोग आखरत में रुसवा होंगे, किस तरह के, वयकुलू, वो कहेगा, अइना शुरकाय्यल्लज़ीना कुंतुम तुशाक्कूना फीहिम, कहाँ है वो मेरे शरीक जिनके ये तुम इतना झगड़ते थे, दलीलें देते थे, ऐसे बातें करते थे, वो कहाँ है जिनको तुम बड़ा समझते थे, जिनके लिए तुम लोगों से लड़ा करते थे, बड़े आर्ग्यूमेंट देते थे ना, तुम तो? वो कहाँ है सारे, तो दुनिया में तो तुम्हें बड़ी बातें बनानी आती थी, तो किधर है। कालल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अब इनको तो कोई बातें आएंगी नहीं, जवाब आएगा नहीं, तो कौन जवाब देगा, वो जिनको अल इल्म दिया गया, अल इल्म, सिर्फ ऊ तो इल्म नहीं कहा गया, ऊ तुल इल्म, अल इल्म, स्पेसिफिक कोई इल्म है ना, प्रॉपर नाउन है ना ये, अल इल्म वाले कौन है, जो दीन का इल्म रखते थे, जो वही का इल्म जानते थे, अहले ईमान, वो कहेंगे उस दिन, इन्नल खिज़्यल यौमा वस्सू अलल काफिरीन, वो आगे बढ़ के कहेंगे कि बेशक आज के दिन रुसवाई है और बुराई है काफिरों पर। रुसवाई का इसका मतलब अजाब अलग होगा, बेइज्जती, जिल्लत, कि इंसान कहता है ना कि रोटी खाने को ना मिले लेकिन इज्जत रहे, इज्जत बड़ी चीज होती है ना, तो उनकी जो जलील हो रहे होंगे वहां खड़े होके, और उसके अलावा अजाब अलग चीज है, वो सजा अलग चीज है, वो सू है। तो दुनिया में तो लड़ते फिरते थे ना लोगों से, दुनिया में तो बड़ी किताबें लिख रहे थे, दुनिया में तो मजलिसों में बैठते थे, बड़ी बातें करते थे ना, तुम तो किसी को बोलने नहीं देते थे, तो अब जवाब नहीं कोई आ रहा, जवाब क्या दे, इतनी सब कुछ तो सामने आ गया, तो फिर जाओ बुला के लाओ ना उनको जिनसे लिए तुम लड़ा करते थे। तो अब ना वो हैं जिनके लिए ये लड़ते थे, ना इनके पास कोई जवाब है। तो इल्म वाले, इसका यहां से इल्म की फजीलत भी आपको पता चलती है कि इल्म वालों की इज्जत कितनी होगी कयामत के दिन, कि वो बोलेंगे। तो अब देख लें ये सब, अब इसके बाद इनको अपना भी बोझ उठाना पड़ेगा, सारा का सारा काम मिला खुद भी उठाएंगे, दूसरों का भी उठाएंगे। तो इसका मतलब इंसान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, कुछ बोलने से पहले, कुछ किसी को बताने से पहले, किसी के आगे कोई बात रखने से पहले, आपकी बातों का इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर। हो सकता है आपकी कोई बात सुन के कोई सीधे रास्ते पे आ जाए, या हो सकता है कोई मिसगाइड हो जाए। अब आपको पता ही नहीं चला आपने मिसगाइड कर दिया किसी को, ये इंसान के आसार होते हैं ना। हो सकता है कि आपने मिसलीड करने के लिए ना कहा हो, वैसे ही एक बात कह दी हो, लेकिन किसी दूसरे ने उसको पकड़ लिया। और हो सकता है आपने कोई नेकी की बात वैसे ही कही हो, लेकिन किसी ने उस बात को समझ के और तौबा कर ली हो किसी गुनाह से और नेकी की तरफ आ गया। लिहाजा वेरी केयरफुल रहे कि हम क्या बोल रहे हैं लोगों के आगे, ऐसे ही ना इधर की उधर मारते रहे। हमारी हर बात का कहीं ना कहीं असर है, कोई ना कुछ ले, कोई ना कोई कुछ ले रहा होता है। और ये भी कभी ना करेंगे सुनी सुनाई बातों को आगे आगे चलाते जाएं, ये मत करें। सुनी सुनाई बातों को आगे करने की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास ऑथेंटिक इल्म ना हो। हाँ, कुरान की बात को जरूर करें, जरूर ये शेयर करें, हमने आज ये पढ़ा, हमें आज ये समझ आई, जरूर करें ये शेयर। ये है हक, ये है ऑथेंटिक इल्म, ये बगैर इल्म के बात नहीं होगी। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين